दौला पुस्तक 11 लेक्चर नंबर 1 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाहूण कम्मठजनिय वेण वहि समुत्तिन्नये जिनेनमिं वेण महाहि आरं विविह हि आरं परुवेमहुं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें ये जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना। यही हमारा वेदना अनुयोग द्वार चल रहा था, 9वें 10वें और अभी ये 11वीं पुस्तक में भी। पहले हमने वेदना में से वो कृति अनुयोग द्वार देखा था, फिर उसमें वेदना द्रव्य विधान देखा था, उसमें से अन्य निक्षेप आदि देखे थे। अब यहाँ वेदना में क्षेत्र विधान की बात चल रही है। कृति अनुयोग द्वार इन्हें वो तो हमने देखे थे ना कि परिशातन कृति, संघातन कृति, औदारिक शरीर के परमाणु लेता है छोड़ता है, उसकी बात हमने देखी थी। भूल गए ना बहुत अभी। देखो वेदना का अर्थ होता है कर्म। वेदना नाम भी है ना वेदना, ये खंड का नाम ही वेदना खंड है। पहला खंड कौन सा था? जीवस्थान, वो पहला। उसके बाद वो सारे द्रव्य 6 पुस्तक तक तो जीवस्थान ही चल रहा था। चूली का थी, पर वो वहां तक तो जीवस्थान का ही प्रकरण था। हाँ, जीवस्थान के बाद हमने बंध विचय स्वामित्व वगैरह वगैरह देखा था बीच में, यानी वो खुदा बंध देखा था और फिर उसका बंध विचय स्वामित्व देखा था 8वीं पुस्तक में, यानी 7वीं में खुदा बंध और 8वीं में खुदा बंध है वो क्षुद्र बंध, और हमने जो 7 पुस्तकें पढ़ी वो महाबंध। तो जो षटखंडागम का 6ठा खंड है उसका नाम है महाबंध है, यानी बहुत विस्तार से बंध की चर्चा है। और 7वीं में खुदा बंध है, क्षुद्र बंध जिसको कहेंगे, और फिर 8वीं पुस्तक थी बंध विचय स्वामित्व, यानी बंध के बारे में ही वो सब बातें थी। अब 9वीं 10वीं और ये 11वीं ये तो वेदना खंड ही बात चल रही है। तो पहले हमने वो कृति अनुयोग द्वार देखा था 9वीं पुस्तक में, 10वीं में वेदना का द्रव्य विधान मुख्य था, बाकी 2-3 छोटे छोटे अनुयोग देखे थे उसके, द्रव्य विधान यानी उसकी संख्या। तो हमने ये बात वहां देखी थी 10वीं पुस्तक में कि कौन से जीव को ज्ञान आवरण की समझो, उसके परमाणु की सत्ता यानी सत्व मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, उसकी बात हमने देखी थी, उसके सारे कंडीशंस उसकी चर्चा वहां हुई। अब यहाँ का विषय जो है वेदना के नहीं, द्रव्य जो कर्म जो है उसके परमाणु या वो कर्म अधिक क्षेत्र या कम क्षेत्र कहाँ व्याप्ता है। अभी कर्म कहाँ है तो जीव के प्रदेशों में ही है, तो जब जीव की अवगाहना बड़ी हो जाएगी या समुद्घात करेगा तो वो क्षेत्र भी अधिक करेगा, तो इस तरह से इसकी चर्चा यहाँ चलेगी, इसका विषय तो यही रहेगा। तो यहाँ कहते हैं वेदना खेत विहाणाणु योगतारम, यानी वेदना क्षेत्र विधान अनुयोग द्वार, ये उसका नाम है। अब इस अनुयोग का अनुयोग यानी इसका ये चैप्टर है, यहाँ ये विषय है। सूत्र नंबर 1 को पढ़ते हैं, वेयणा खेत विहाणिति तथ्य इमाणी तिन्नी अनुयोगदाराणी नादव्वाणी भवंती। इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं नीचे, वेदना क्षेत्र विधान यह जो अनुयोग द्वार है उसमें ये 3 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। एक चैप्टर में और सब चैप्टर्स जो है तीन हो गए इसमें से, यानी तीन पद्धति से ये क्षेत्र का यहाँ वर्णन होगा। ये कौन कौन से है वो दूसरे सूत्र में बताएंगे, उसके पहले उसकी चर्चा करते उसके ऊपर। वेदना में निक्षिप्त क्षेत्र का यहाँ निक्षेप करना चाहिए। हमें कोई भी विषय हम शुरू करते हैं तो उसमें निक्षेप से शुरू करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव आपने बहुत बार सुना भी होगा अनेक विषयों में, कि किसी का नाम कह देना तो ये तो नाम, अन्य चीज में अन्य वस्तु को इमेजिन करना, कल्पना करना, उसकी स्थापना करना, ये होता है स्थापना निक्षेप। जैसे भगवान की मूर्ति में, ये हमारे महावीर भगवान है, ये हमारे शांतिनाथ भगवान है, वो तो मूर्ति संगमर की या धातु की जो कोई बनाई है तो उसमें वो हम संकल्प करते हैं कि ये अमुक भगवान है, फिर मंत्रोच्चार पूर्वक विधि पूर्वक हम वो जो स्थापना करते हैं, तो फिर ये साक्षात महावीर भगवान है ऐसे उनकी हम पूजन करते हैं, उनके स्तुति गाते हैं, हम नमस्कार करते हैं, इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। एक वस्तु में अन्य वस्तु का वहां संकल्प करना, स्थापना करना, नाम हुआ, स्थापना हुआ। द्रव्य ने, द्रव्य तो वही है परंतु पूर्व या बाद वाली पर्याय को हम वर्तमान में उसका उपचार करेंगे। जैसे हमने आपको पूछा हमारे भविष्य के प्रथम तीर्थंकर कौन है यहाँ भरत क्षेत्र के, मालूम है मनीषा बेन? श्रेणिक राजा। तो श्रेणिक राजा को कहना, पर श्रेणिक राजा तो अभी हो गया, अभी तो वर्तमान में वो नारकी है, पहले नरक के श्रेणिक राजा तो पूर्व भव में थे और भविष्य में वो तो यहाँ के महापद्म नाम के तीर्थंकर हो गए, परंतु उनको हम श्रेणिक राजा करके संबोधन करते हैं। तो पर्याय वही पर्याय है, द्रव्य वही है, पर्याय जुदी होने पर भूत या भविष्य की पर्याय को वर्तमान में हम उपचार कर रहे हैं तो हम उसको उस नाम से हम कह सकते हैं, यानी वो भी उपचार है, इस तरह से उपचार किए जाते हैं। इसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप जो वर्तमान में है वहाँ वर्तमान में निक्षेप करता है, रखना किसमें रखना, तो वस्तु में रखना, ज्ञेय में निक्षेप, ज्ञेय में होते हैं और नए ज्ञान में होते हैं। हाँ, आपको नए की बात चल रही है ना? हाँ, यानी वस्तु को ज्ञेयों को हम समझना है हम, तो उनमें ये चार पद्धति से उसके भेद प्रभेद करके या उसमें विशेषताएं जानकर फिर हम उसका वर्णन करते हैं, और उनको जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय उसको हम नए नाम देते हैं। अभी वो नयों की चर्चा अभी नहीं कहेंगे, ये निक्षेप की बात यहाँ चल रही है। तो कहते हैं जो यहाँ पर भी क्षेत्र में भी ये सारे निक्षेप करना चाहिए। तो शंकाकार पूछते हैं क्षेत्र का निक्षेप किस लिए करते हैं? समाधान, क्योंकि ये अलग अलग पद्धति से हमने किसी इनका नाम क्षेत्र ऐसा नाम रख दिया तो नाम क्षेत्र हो गया, किसी एक में दूसरे की स्थापना कर दी। जैसे हम कहते ना, हम ऐसे पेपर पर हमने ऐसा ड्राइंग कर दिया, ये हमारा घर है, वो सारे पहले वो तो उसके प्रिंट निकालते हैं ना पहले घर बनाने के पहले, हाँ प्लान उसका, तो उसको हमने वो क्षेत्र की स्थापना की वहां पर। द्रव्य में ने कोई पूर्व या बाद वाले पर्याय को भी हम कह सकते हैं और भाव में भी अलग अलग, इसमें से कौन सा क्षेत्र हमें चाहिए यहाँ पर, इसलिए सारे उनके पहले चर्चा करेंगे, फिर इसमें से यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हमें इष्ट है, यानी कौन सा स्पेसिफिक कौन से क्षेत्र की बात करेंगे वो बाद में बताएंगे, इसलिए निक्षेप सभी बताएंगे। शंकाकार क्या पूछते हैं, क्षेत्र का निक्षेप किस लिए करते हैं? समाधान, अप्रकृत। अप्रकृत यानी नॉन स्पेसिफिक, प्रकृत यानी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कहेंगे प्रकृत। अप्रकृत यानी जो अन्य जो निक्षेप है उसको हम अप्रकृत कहेंगे। तो अप्रकृत क्षेत्र स्थान का प्रतिषेध करके, यानी हम कौन सी बात यहाँ बताना चाहते हैं वो पहले बताएंगे, वो हो गया प्रकृत, और बाकी की चर्चा करेंगे पर उसका बाद में निषेध करेंगे। तो उसका निषेध करने के लिए और स्पेसिफिक कौन से निक्षेप की अपेक्षा हम यहाँ कहेंगे बात, वो कहने के लिए पहले सारे निक्षेप बताएंगे। फिर से पढ़ते, अप्रकृत क्षेत्र स्थान का प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी निषेध करना, उसको रूल आउट करना करके प्रकृत क्षेत्र, प्रकृत यानी हम जिसकी चर्चा करना चाहते हैं क्षेत्र की अर्थ प्ररूपणा करने के लिए यानी उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन करने के लिए क्षेत्र का निक्षेप करते हैं, कहा भी है, और उसके लिए गाथा प्रस्तुत करते ऊपर जो हम पढ़ेंगे। अपयद निवारणठम पयदस्य परुवणानिमित्तं च संशय विनाशनठम तच्चत्थवहारणठम च। इन्हें निक्षेप क्यों किए जाते हैं उसका वर्णन है यहाँ। देखो नीचे हम अर्थ पढ़ते हैं, अप्रकृत का निवारण करने के लिए, निवारण करो, रूल आउट करो, कहो बात एक ही है, निवारण करना है ने उसको रूल आउट करना है हमको। अप्रकृत का यानी जो हमें नहीं चाहिए, न स्पेसिफिक नहीं है, निवारण करने के लिए और प्रकृत की प्ररूपणा करने के लिए, उसमें से कौन सा निक्षेप से जो हम क्षेत्र कह रहे हैं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसको बताने के लिए, संशय को नष्ट करने के लिए, क्योंकि निक्षेप क्यों किए जाते हैं, वस्तु में किए जाते हैं, तो उस संबंध में हमारे जो कोई संशय है, कंफ्यूजन है कहो, तो हमारा ज्ञान सही हो जाए इसलिए वो निक्षेप किए जाते हैं। और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेप किया जाता है यानी वस्तु को जानने के नए और निक्षेप से वस्तु को जाना जाता है, किसी भी विषय को जाना जाता है, इसलिए हम जो कोई विषय शुरुआत करते हैं शुरुआत में उस पर निक्षेप लगाए जाते हैं। अब दोनों कितना जगह व्याप्ता है उसको उसका क्षेत्र कहेंगे, तो उस पर अभी यहाँ चार प्रकार सभी निक्षेप पहले बताएंगे, उसमें से हमें कौन सा प्रकृत यानी स्पेसिफिक है उसकी चर्चा अब करेंगे। कहते क्षेत्र चार प्रकार का है, नाम क्षेत्र, स्थापना क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र और भाव क्षेत्र। उनमें नाम क्षेत्र और स्थापना क्षेत्र सुगम है, हमने बताया किसी का नाम क्षेत्र या नाम लिख रख दिया हमने किसी का, हो गया नाम क्षेत्र। और स्थापना क्षेत्र किसी अन्य चीज में वो क्षेत्र की स्थापना करने, जैसे हमने पेपर पर ड्राइंग बताया और उसमें हमने क्षेत्र की स्थापना की, तो वो हो गया स्थापना क्षेत्र। द्रव्य क्षेत्र, अभी जो द्रव्य निक्षेप लगाते हैं, अभी क्षेत्र के ऊपर हमको द्रव्य निक्षेप लगाने हैं, तो इसमें हमेशा दो भेद करते हैं, आगम और नो आगम। आगम का अर्थ क्या है, क्षेत्र संबंधी जो हमारे आगम है, शास्त्र है, उसको जानकार जीव, परंतु उसमें उसका उपयोग नहीं है, उसने वो जानने वाला जीव है, परंतु अभी उसका उपयोग अन्य चीज में लगा है, अभी वो शास्त्र के यानी क्षेत्र संबंधी शास्त्र का अभी अभ्यास नहीं कर रहा है, अभी उसको अन्य अभ्यास कर रहा हो या हमारे जैसा कोई आपस में बात कर रहा हो, उसका उपयोग उसमें नहीं है। उस जीव को हम आगम से उस जीव को क्षेत्र कह रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र संबंधी जानकारी है, उसको जानकारी कौन से आगम में है, हाँ। ये लौकिक की बात नहीं है, पर तो उस जीव को ही हम क्षेत्र कहेंगे। कैसा क्षेत्र, आगम द्रव्य क्षेत्र, आगम को जानने वाला है, उसलिए उस जीव को ही हम क्षेत्र कह रहे हैं, परंतु वो द्रव्य निक्षेप में क्या रहते हैं, उसके भूत भविष्य की पर्याय है, इसलिए वर्तमान में उपयोग वाला नहीं लेना है, वो वर्तमान में उपयोग वाला वो भाव निक्षेप में लेंगे। अब यहाँ देखते देखो, द्रव्य क्षेत्र जो है यानी द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो आगम और नो आगम द्रव्य क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है। ये बात, ये निक्षेप बहुत बार लगा लिए इसलिए एक एक लाइन में वो बता रहे हैं। नो आगम वो नहीं जानने वाला, अभी देखो नहीं जानने वाले में कौन कौन से हो सकता है, नहीं जानने वाले में उस जीव का शरीर हो सकता है जिसको हम ज्ञायक शरीर कहते हैं, नहीं जानने वाले में वो जीव हो सकता है जो भविष्य में जानेगा, अभी नहीं जान रहा है, उसको भावी कहते हैं, और नहीं जानने वाले में वो जीव भी नहीं लेना, उसका शरीर भी नहीं लेना, खुद क्या ले सकते, उसका कर्म ले सकते, अन्य चीजें ले सकते हैं, वो तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त है नहीं? उनको छोड़कर अन्य। देखो अभी हम यहां से पढ़ेंगे, तद व्यतिरिक्त की बात, नो आगम है, नो आगम के तीन भेद होते हैं, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और एक तद व्यतिरिक्त। अब ज्ञायक शरीर के भी और भेद करेंगे, एक वर्तमान का ज्ञायक यानी वर्तमान का शरीर, पिछले भव में जो छूट आया है ज्ञायक शरीर, और भावी भविष्य काल में जिस शरीर को धारण करेंगे उस शरीर को भी उपचार से करेंगे। अभी उसमें भेद के भेद हमने बहुत देखे थे, आत्म शरीर कैसे जुड़ा था, चित्त चामित और फिर पढ़ती हूँ लास्ट। द्रव्य क्षेत्र आगम और नुआगम द्रव्य क्षेत्र के भेद से दो प्रकार है, उनमें क्षेत्र प्रावृत, प्रावृत है जैसे पाहुड़ जिसको कहेंगे, जैसे हमने समय पाहुड़ उसको प्रावृत कहते हैं, यानी हमारे जो आगम है उसको प्रावृत कहते हैं, वो उसके भेद भी है ना, प्रावृत प्रावृतक प्रावृतक वगैरह। तो क्षेत्र प्रावृत का यानी आगम में जो क्षेत्र संबंधी जो कुछ हमारे शास्त्र है उसको जानने वाला, जानकार यानी जानने वाला जीव, परंतु कैसा लिया, उपयोग रहित जीव। अरे जीव तो कभी उपयोग रहित नहीं होता, परंतु उसमें उसका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग जैसे आपको अभी अन्य चीजों की नॉलेज है, किचन का रसोई कर अभी अभी शास्त्र में उपयोग लगा है, उसमें उपयोग नहीं है, इसको कहते उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य क्षेत्र कहलाता है। यानी उस जीव को हमने क्षेत्र कह दिया, कैसे, आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा, तो उसको कहेंगे ये आगम द्रव्य क्षेत्र है। किसको कहा, वो जीव को, कौन सा जीव है, वो जो क्षेत्र संबंधी आगम को जानने वाला है, अभी उसमें उसका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग अन्यत्र है। अब नो आगम द्रव्य क्षेत्र, नो आगम यानी नहीं जानने वाला, तो नहीं जानने वाला है उसको कहा नो आगम, वो आगम का जानकार नहीं है, तो उसमें किसको किसको लेना, तो शरीर को लेना, उस जीव को, जानने वाले जीव को शरीर के, जीव तो जान रहा है पर उसका शरीर नहीं जान रहा है, इसलिए शरीर को नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहेंगे। देखो नो आगम द्रव्य क्षेत्र, अभी उसके तीन भेद बताए, ज्ञायक शरीर, ज्ञायक शरीर का अर्थ थे ज्ञायक का शरीर, शरीर तो जानने वाला, ज्ञायक शरीर जानने वाले जीव का शरीर, उसको यहाँ ज्ञायक शरीर कहा। भावी, भावी यानी वो जीव जो भविष्य में जानने वाला है, उसको ये भावी में जीव को लिया, जो अभी नहीं जान रहा है परंतु केवल ज्ञानी तो जानते वो भविष्य में जानेगा करके, उसको भावी कहा। और तद व्यतिरिक्त यानी इन दोनों को छोड़कर अन्य जो कुछ है, भेद से तीन प्रकार का है, उनमें ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य क्षेत्र सुगम है। मैंने बहुत बार उसकी चर्चा पूर्व में हुई हो चुकी, इसलिए सुगम है कहकर एक लाइन में लिख दिया, पर हमको मालूम है ज्ञायक शरीर ने ज्ञायक उस जीव का शरीर, जो पूर्व भव का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है, भविष्य का शरीर भी हो सकता है, भावी में वो जीव को लेना जो भविष्य में जानने वाला है। अब तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र है, वो क्षेत्र एक एक्स्ट्रा छप चुका है वहां पर पुरानी पुस्तकों में, इस तरह पढ़ना, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र है, वह दो प्रकार का है। नई पुस्तक में बराबर है, करीब दो बार लिखा है, अच्छा वो एक बार बाद वाला निकाल दो, आकाश है। तद व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य क्षेत्र ऊपर देखो, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, ऊपर प्राकृत में पांचवी लाइन, तव व्यतिरिक्त नुआगम क्षेत्रम आकाश, तद व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य क्षेत्र आकाश है, आकाश करना उसको, क्षेत्र के बदले आकाश लिखो, उसमें लिखा होगा ना आकाश है, वह दो प्रकार का, यानी जो आकाश है, क्योंकि क्षेत्र तो आकाश में ही हमने अपने ही आकाश है, तो वो दो प्रकार का है, कौन सा, लोकाकाश और अलोकाकाश, ये तो हम सब मानते हैं, परंतु उसको नाम क्या दिया यहाँ पर, ये बातें हमें नई नहीं है, परंतु यहाँ हम क्षेत्र के विषय में इसको क्या कहना, तो आकाश को क्या कह रहे हम, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र, इनमें जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं या जाने जाते हैं वह लोक। लोक शब्द कैसे आया है? लोक यानी दिखाई देते हैं, आलोक यति लोक, जहाँ दिखाई देते हैं, जाने जाते हैं, यानी सभी जो अन्य पांच द्रव्य, आकाश तो है ही है, परंतु लोक कहने से लोकाकाश और केवल लोक, लोक कहने से सारे ही द्रव्य उसमें आ गए। जहाँ सभी द्रव्य दिखाई देते हैं उसको लोक कहते हैं। उससे विपरीत अलोक है, अलोक में केवल आकाश द्रव्य है, वहां अन्य कोई द्रव्य नहीं है, उसको हम अलोक कहेंगे। शंका, आकाश की क्षेत्र संज्ञा कैसे है? यानी आकाश को क्षेत्र क्यों कह रहे हो? संज्ञा ने उसका नाम क्षेत्र क्यों पढ़ा आपने? समाधान, क्षीयंती अस्मिन, ये जो संस्कृत के शब्द जो तैयार हुए है, कौन से वर्ब यानी धातु कहते हैं उसको, वर्ब यानी धातु क्रियापद, कौन से क्रियापद से वो हुए है उसको यहाँ बताते हैं। क्षीयंति अस्मिन अर्थात जिसमें जीवादिक रहते हैं वह आकाश है। इस निरुक्ति के अनुसार आकाश को क्षेत्र कहना उचित ही है, यानी जिसमें रहते हैं, जिसमें पाए जाते हैं। अब हो गया द्रव्य, यानी तद व्यतिरिक्त की बात हुई, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब भाव क्षेत्र, यानी भाव निक्षेप लगा रहे, क्षेत्र शब्द पर भाव निक्षेप, हमने द्रव्य निक्षेप लिखा, आगम नो आगम, अभी भाव की बात करेंगे। तो जो भाव क्षेत्र है, आगम और नो आगम भाव क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का, इसमें भी आगम और नो आगम करना। अभी आगम में क्या कहेंगे? भाव यानी अभी वर्तमान पर्याय लेना, यानी वो वर्तमान में उसके उपयोग है, जानकार भी है और उसी में उसका उपयोग है। उसमें क्षेत्र प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव आगम भाव क्षेत्र है, उस जीव को ही आगम भाव की अपेक्षा क्षेत्र कह दिया। सब द्रव्यों का अपना अपना भाव नो आगम भाव क्षेत्र कहलाता है। देखो देखो, वही शंकाकार पूछता है, सभी द्रव्यों का अपना अपना भाव लिया, भाव निक्षेप लगा रहे ना, भाव आगम लेगा, तो कहते नो आगम मैंने नहीं जानने वाले, तो सभी द्रव्यों का अपना अपना जो भाव है वो नो आगम भाव क्षेत्र कहलाता है। अभी शंकाकार क्या पूछते हैं? भाव की क्षेत्र संज्ञा कैसे हो सकती? प्रश्न तो हमें भी यही उठा था, है ना? भाव को हमने क्षेत्र संज्ञा क्यों कहा? उसका समाधान, उसमें सब द्रव्यों का अवस्थान होने से भाव की क्षेत्र संज्ञा बन जाती है। क्या कहना चाहते है? हम कहते हैं द्रव्य को वस्तु क्यों कहते हैं? बोलो। अपने गुण और पर्याय में वसते हैं, यही तो। जैसे जीवादि पदार्थ रहते उसको क्षेत्र कहा आकाश को, अब यहाँ द्रव्य किस में रहते? तो अपने अपने भावों में रहते हैं, इसलिए वो भाव को भी क्षेत्र कह दिया। अपेक्षा समझ में है ना? पहले क्या देखा उन्होंने, आकाश को क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि आकाश में अन्य जीवादिक सभी रहते हैं, इसलिए उसको क्षेत्र कहा है, आकाश को ही क्षेत्र कहा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाव को क्यों कहा क्षेत्र? क्योंकि सभी द्रव्य अपने अपने भावों में रहते हैं, इसलिए उसको भाव को ही क्षेत्र कह दिया। ये नो आगम से उसको भाव क्षेत्र कहते हैं। यहाँ अभी इतने सारे भेद हमने देखे, अब यहाँ किसका प्रकरण है ये पूछ रहे हैं। यहाँ इन्हें अभी इस पुस्तक में नो आगम द्रव्य क्षेत्र का अधिकार है। आठ प्रकार के कर्म द्रव्य की वेदना संज्ञा है, यानी आठ प्रकार के जो द्रव्य कर्म है, कर्म द्रव्य नहीं है, कर्म के परमाणु, कर्म द्रव्य और द्रव्य कर्म कहने से वो कर्म आ गए, और यहाँ उसके कर्म का द्रव्य ने कर्म के परमाणु अलग अलग जो, उसको कर्म द्रव्य कहा, उसी को वेदना कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, आठ प्रकार के कर्म द्रव्य की वेदना संज्ञा है, यानी आठ प्रकार के कर्म परमाणु जो है, अलग अलग कर्म हो गए ना, कर्माणु वर्गना से कर्म रूप परिणत हो गए, कौन कौन से आठ है बताएंगे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनीय अंतराय, हाँ, फिर हाँ वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, घाती अघाती, इस तरह से भेद करते हैं। कभी कभी वो नंबरिंग करेंगे तो वेदनीय तीसरे नंबर पर आता है, मोनीय चौथे नंबर पर, और फिर लास्ट में अंतराय को रखते हैं। ये अलग अलग पद्धति से कहने के, ये आठों ही कर्मों को यहाँ वेदना कह रहे हैं। तो कहते आठ प्रकार के कर्म द्रव्य की वेदना संज्ञा है। वेदना का क्षेत्र, वेदना क्षेत्र ये समास कहते उसको, मराठी हिंदी संस्कृत में शब्द जोड़ शब्द तैयार होता है। जैसे हमने ज्ञायक शरीर का अर्थ क्या देखा था, ज्ञायक का शरीर, तो यहाँ वेदना क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, वेदना का क्षेत्र, जिसको आप गुजराती में सीखी क्या अंग्रेजी, हाँ तो षष्ठी तत्पुरुष ऐसा याद होगा। संबंध बता के उसको हम एक शब्द करते थे, हाँ उसका, तो वेदना का क्षेत्र, तो वेदना क्षेत्र, वेदना क्षेत्र का विधान, वेदना क्षेत्र विधान, इन्हें तीन शब्द मिलाकर एक एक पूरा हेडिंग बना लिया, वेदना क्षेत्र विधान। वेदना का क्षेत्र उसको कहेंगे वेदना क्षेत्र, और वेदना क्षेत्र का विधान, विधान यानी उसका जो अभी हम प्ररूपणा होगी, उसका कथन होगा, उसको कहेंगे वेदना क्षेत्र विधान। यह पांचवे अनुयोग द्वार का गुण नाम है। इसके पहले हमने चार अनुयोग द्वार उसमें द्रव्य द्रव्य तक देखा था, पहले पुस्तक में द्रव्य विधान वो देखा, यानी संख्या की बात देखी थी। अब यहाँ वेदना संबंधी ये जो चैप्टर है, जो अभी इस 11वीं पुस्तक का विषय है पहले में पहले, तो कहते उसका गुण नाम है। गुण नाम किसको कहते मालूम है, हाँ ये जो उसमें विषय बताया वैसे उसका नाम बताया, इसको कहते गुण नाम। ऐसे नाम भी रखने के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से ये गुण नाम हो गया। सूत्र में स्थित इति शब्द व्यवच्छेद करने वाला है, उस वेदना क्षेत्र विधान में ये तीन अनुयोग द्वार है, यानी इति कहने से यह सूत्र था कि वेदना क्षेत्र विधान यह जो अनुयोग द्वार है, वेदना क्षेत्र यानी ति तथ्य हिमानी, यानी उसको उस एक की बात यहाँ पर है। अभी ये उसमें तीन अनुयोग द्वार, ये सूत्र का अर्थ इतना ही है कि वेदना क्षेत्र विधान ये जो अनुयोग द्वार है उसमें और तीन अलग अलग उसके चैप्टर्स है। कौन से तीन अनुयोग द्वार उसको कहते हैं, तो ये कौन से वो तो बताएंगे दूसरे सूत्र में। अभी हम आते हैं तीन नंबर के प्रश्न। क्यों नहीं वो अभी पता चलेगा, कारण कि संख्या स्थान और जीव समुदाहार तो यहाँ संभव नहीं है। जब क्षेत्र है वो कितना है वो बताएंगे, उसमें संख्या की बात ही नहीं है, उसमें अन्य कोई बात ही नहीं, केवल स्थानों की चर्चा नहीं, क्षेत्र की बात होगी वहां पर। स्थान का अर्थ होते उसके वेरिएशंस वगैरह, वो यहाँ संभव नहीं है क्योंकि उनका अंतर्भाव यानी वो इंक्लूड होते किसमें, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य भेद से स्वामित्व अनुयोग द्वार में होता है। जब अन्यत्र हम स्थानों की चर्चा करते, जैसे हमने योग स्थान बंध स्थान देखे थे तो अलग 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 देखे थे, अब यहाँ क्षेत्र उत्कृष्ट क्षेत्र कहाँ होता है, जघन्य कहाँ होता है, जो उत्कृष्ट भी नहीं है जघन्य भी नहीं उसको अनुत्कृष्ट अजघन्य कह देंगे, वो स्वामित्व में ही आ जाता है। यानी स्वामित्व में वो ऐसा पूछेंगे उत्कृष्ट द्रव्य वेदना किसके, वेदना क्षेत्र कहाँ होता है, यानी मैक्सिमम ये कर्म जो है वो मैक्सिमम क्षेत्र कहाँ व्याप्त है, तो कहेंगे जहाँ बड़ी अवगाहना होती है, जहाँ वो समुद्घात करते हैं वहाँ होता ही है, ऐसा कहेंगे। अलग अलग कर्मों पर अलग अलग होगा, तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षेत्र केवली समुद्घात में होगा कि नहीं होगा, बहुत अच्छा, क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छा भाई, हाँ क्यों नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो कितने सटीक बताया हमने आपको, ऐसा ही प्रश्न पूछा कि तेरहवें गुणस्थान में तो ज्ञानावरण है ही नहीं, कि ज्ञानावरण का क्षय हो गया तो तेरहवा गुणस्थान हो गया, तो वहाँ कैसा होगा, भले उसका केवली समुदाय में क्षेत्र बड़ा है, तो हम कहेंगे वो तो वो बताएंगे, अभी वो महामत्स्य जो है सातवें नरक में मारणांतिक करता है उसकी बात करेंगे, इस तरह से अभी सोचेंगे। देखो यानी ये जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वगैरह बात है वो स्वामित्व में बता देते हैं। ओज युग्म अनुयोग द्वार भी संभव नहीं है। ओज और युग्म वगैरह क्या बात है, यानी ऐसी जो संख्या होती है ना जो चार से डिवाइड करने पर जीरो रह जाती है, ऐसी भी संख्या होती है। और जो चार से डिवाइड करने पर कभी तीन बाकी रहते हैं, कभी एक बाकी रहता है, कभी दो बाकी रहते हैं, उसकी अलग अलग संख्या है, वो तेजोज और युग्म ऐसे उसके नाम है। तो उसकी भी बात यहाँ नहीं है। उसका प्रवेश यानी उसका अंतर्भाव पद मीमांसा में होता है। गुणाकार अनुयोग द्वार भी संभव नहीं है क्योंकि उसका प्रवेश अल्प बहुत में है, यानी जो कौन सा क्षेत्र किससे कितने गुना बड़ा है छोटा है, अल्प बहुत्व, छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र तक बताएंगे कितने गुना है क्या है, इसलिए उसको अलग से चैप्टर नहीं बनाया है। इस कारण तीन ही अनुयोग द्वार है यह सिद्ध है, यानी कितने अनुयोग द्वार होते हैं तो तीन होते हैं, इतनी बात बताई। वो तीन कौन से है अब ये सूत्र नंबर दो में बताएंगे। पदमीमांसा सामित्तम अप्पा बहुएत्ति, पदमीमांसा स्वामित्व और अल्प बहुत्व, ये तीन अनुयोग द्वार यहाँ ज्ञातव्य है, यानी यहाँ जानना चाहिए यहाँ होते हैं। शंका, पदमीमांसा को पहले ही किस लिए कहा जाता है? समाधान, चूंकि पदों का ज्ञान न होने पर, अभी पद यानी क्या है, वो उत्कृष्ट है क्या जघन्य है, क्षेत्र उत्कृष्ट जघन्य ये जो है उसको कहेंगे पद होता है। पद 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 यानी उसके पहले बताएंगे ना ये उत्कृष्ट है क्या जघन्य है, वो बताना ये है पद। पद की मीमांसा होगी, पद की चर्चा कर दी, यानी ज्ञानावरण का द्रव्य उत्कृष्ट कहाँ होगा, या इतना ही बताएंगे उत्कृष्ट होता है, बस इतना ही बताएंगे। उत्कृष्ट होता है कहना पद हो गया, और वो कहाँ होता है किसके होता है वो स्वामित्व में आ जाएगा, ये बात है। तो कहते वो उसको पहले क्यों कह देते हैं? समाधान, चूंकि पदों का ज्ञान न होने पर स्वामित्व और अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की नहीं जा सकती। अगर ऐसा पूछा नहीं हमने कि उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट है कहेंगे तो किसके है उसकी चर्चा होगी, स्वामित्व है ने वो उत्कृष्ट किसको होता है। अगर वो उत्कृष्ट है कि जघन्य है कि अजघन्य अनुत्कृष्ट है कहेंगे ही नहीं, तो उसके स्वामित्व और फिर उसमें कम छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है ये लगाने की बात ही नहीं हो सकती। इसलिए पहले पद बताएंगे, बाद में उस पर स्वामित्व और अल्पभूत्व बताएंगे। अतएव पहले पद मीमांसा की प्ररूपना की जा रही है। शंकाकार, उसके पश्चात स्वामित्व अनुयोग द्वार को ही किस लिए कहते हैं? यानी एक एक शब्द पहले इसको क्यों पहले उसको क्यों, ये चर्चा के द्वारा आचार्य हमको बताना चाहते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि पद प्रमाण स्वामी का ज्ञान न होने पर उनका अल्प बहुत्व बन नहीं सकता। इस कारण निर्दोष होने से उक्त अधिकारों के इसी विन्यास क्रम को स्वीकार करना चाहिए। यानी पहले पद मीमांसा, बाद में स्वामित्व और फिर अल्प बहुत्व, ये उसका जो क्रम है विन्यास उसका विस्तार, इसी तरह से हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। अब पद मीमांसा में क्या बताएंगे वो बताएंगे अभी यहाँ तीन नंबर के सूत्र में। पद मीमांसाए नानावर्णीय वेणा खेतदो किम उक्कसा किम अणुक्कसा किम जहन्ना किम अजहन्ना। मैंने अभी ये कहते कि ज्ञानावरण में क्या उत्कृष्ट हो सकता है कि जघन्य हो सकता है कि अजघन्य हो सकता है, कौन से उसमें लगते हैं? तो कहते पद मीमांसा में ज्ञानावरणीय की वेदना, वेदना का अर्थ क्या कहा था हमने? कर्म का जो द्रव्य है, कर्म की यानी परमाणु यानी उसके पूरा कर्म हम कहेंगे उसको, कर्म का द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है क्या अनुत्कृष्ट है क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है, यहाँ प्रश्न चिन्ह करना, दंड दिया ना, ये तो यहाँ सूत्रों में पहले प्रश्न पूछा जाता है फिर उसका उत्तर दिया जाता है। बाद में तो कहेंगे चारों प्रकार का होता है, परंतु यह पहले में पृच्छात्मक वहां सूत्र बताए उन्होंने। सूत्र में ज्ञानावरण पद का ग्रहण करके शेष कर्मों का प्रतिषेध किया है, क्योंकि हम ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक कर्म की अलग अलग बात करें।
यानी ये यहाँ पे ऐसा करना चाहते हैं कि जो ज्ञानवर्णीय कर्म है अपने कितने क्षेत्र में उत्कृष्ट कर्म से रहता है वो?
ऐसा नहीं, अभी एक जीव का ज्ञानावरण है तो उसके उत्कृष्ट क्षेत्र होगा क्या उसके लिए? तो हाँ होगा, तो किसके लिए होगा तो बाद में बताएंगे। वो महामत्स्य वो उत्कृष्ट उगाना वाला, वो वेदना के साथ मारणांतिक करेगा, सातवें नरक में फैलेगी प्रदेश मध्य लोक से सातवें नरक तक, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो उसके उत्कृष्ट होते। यानी क्या इसमें उत्कृष्ट पद है तो कहते है, जिसको उत्कृष्ट नहीं उसको अनुत्कृष्ट भी होगा। और जघन्य भी पद है ज्ञानावरण का, कहाँ पर होगा जघन्य? बोलो बोलो, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त, उसकी जो मिनिमम अवगाहना बहु के तीसरे समय में होगी, क्योंकि पहले आयत होता है फिर चौकोन फिर गोलाकार होता है, इसलिए उस समय उसकी होगी। तो ये उसके जघन्य भी है, उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, अजघन्य भी है, चारों प्रकार है तो किसके है वो स्वामित्व में बताएंगे। पहले होती है, बस होती है ये कहना ये यहाँ का है। जैसे हमने पहले देखे ना समुत्कीर्तन, यानी चौदह गुणस्थानों का जब वर्णन है, पहला गुणस्थान है, दूसरा है, तीसरा है, बस है इतना बताना। फिर वो उसमें कितने जीव होते हैं, वो कहाँ होता है, वो कितने क्षेत्र में व्याप्त है, वो बाद में बताते हैं। इसे कोई भी विषय अभी हमने शुरू किया है तो पहले में पहले वो है इतनी बताए, चारों ही प्रकार के उसमें है, बस ये बात यहाँ हो गई। तो कहते ये अभी यहाँ केवल मात्र ज्ञानावरण की बात चल रही है, अन्य कर्मों की नहीं, इसलिए ज्ञानावरण शब्द डाला। तो शेष कर्मों का प्रतिषेध किया, ने अन्य कर्मों की बात नहीं उसका निषेध किया, उसको यहाँ रूल आउट कर दिया। द्रव्य काल और भाव आदि का प्रतिषेध करने के लिए क्षेत्र का निर्देश किया है। द्रव्य ने उसकी जो ज्ञानावरण का द्रव्य, उसकी संख्या कितनी, उसकी बात यहाँ नहीं है। वो कितने काल तक रहेगा उसकी भी बात नहीं है, उसके भाव की भी यहाँ बात नहीं है, ये क्षेत्र की बात हो रही है। यह पृच्छासूत्र, पृच्छासूत्र ने प्रश्नात्मक सूत्र है, ये प्रश्न हमको पूछा गया है उसी का उत्तर भी स्वयं देंगे आचार्य। देशामर्शक है, देशामर्शक है ने देश यानी पार्शल, एक देश यानी वो पार्ट बताता है परंतु उसमें बहुत सारा अर्थ सूचित हो जाता है। जैसे हम मराठी में कहते ताक, कहने से ताक भात समझ जाते हैं, या हमने एक शब्द कह दिया उसके द्वारा हम सभी बाकी बातें समझ सकते हैं, तो देशामर्शक है। कभी कभी होंगे फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक बात कहते हैं उसके द्वारा हम वो बात बहुत सारे एप्लीकेबल होती है, इसको कहते देशामर्शक। यह पृच्छा सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इसके द्वारा अन्य नौ पृच्छाएं सूचित की गई है। देखो क्या कहना चाहते हैं, प्रश्न पूछा एक, उस एक प्रश्न में नौ प्रश्न गर्भित है, इसको कहते हैं देशामर्शक। वो कैसे वो बताएंगे क्या क्या प्रश्न उसमें से निकलते हैं। इस कारण ज्ञानावरण की वेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, इतने तो उन्होंने पूछे थे, पर और कौन से उसमें से निकलते हैं प्रश्न? तो कहते क्या सादिक है, यानी ज्ञानावरण के सादिक यानी उसके आदि होना चाहिए, उसको सादिक कहते, सादि स प्लस आदि, पहले नहीं थी अभी भी हो गए, क्या ऐसा हो सकता है कभी? तो क्या अनादि है, यानी अनादि से ज्ञानावरण की वेदना यानी द्रव्य कर्म है। क्या ध्रुव है, तो ध्रुव है ना वो कायम ही है, कभी नहीं ऐसा होगा ही नहीं है, उसको कहेंगे ध्रुव है, जिसे अभव्यों के लिए हमेशा ही होगा तो ध्रुव है। क्या अध्रुव है, अब जो भव्य है वो ज्ञानावरण का नाश करके चले जाएंगे, तेरहवे चौदह गुण स्थान होकर सिद्ध होंगे, उनके लिए वो अध्रुव कहेंगे, तो ध्रुव है क्या अध्रुव है। क्या ओज है, क्या युग्म है, यानी ओज और युग्म ने वो क्या सम संख्या में है, क्या विषम संख्या में है। क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, ये सब बताएंगे, ये पहले अपना हो चुका था ये। और क्या नोम नो विशिष्ट है, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार सामान्य चूंकि विशेष का अविनाभावी है, पहले सामान्य से चार ही प्रश्न पूछे थे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य, उसी में ये भी इंक्लूडेड है, अंतर्भूत है, इसको कहते हैं विशेष है, और पहले चार ही नाम लिया तो सामान्य से बता दिया, तो हमेशा सामान्य के साथ विशेष भी उसमें होते ही है, उसको कहते अविनाभाव, उसके बिना वो नहीं होते। अतः विशेष का अभाव होने से सामान्य स्वरूप ज्ञानावरणीय वेदना के विषय में इन 13 पृच्छाओं की प्ररूपणा की गई है, यानी वो एक ही सूत्र है उसमें ये 13 प्रश्न गर्भित है। इसी सूत्र से सूचित अन्य 13 पद विषयक पृच्छाओं को कहना चाहिए यथा। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, अभी एक उसमें से पद लेंगे तो जो उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट हो सकता है क्या, जो उत्कृष्ट है वो जघन्य हो सकता, ऐसा प्रश्न पूछेंगे। और देखो फिर से, यहाँ यथा क्या आगे, उत्कृष्ट ज्ञानावरण वेदना क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्या सादिक है, क्या अनादिक है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, क्या नोम नो विशिष्ट है। ये 12 पृष्ठाएं उत्कृष्ट पद के विषय में होती है। पहले 13 पद बताए, अब कहते उत्कृष्ट ज्ञानावरण वेदना कब होगी, जो हमने वो तो नारक में जाने वाला वो महामत्स्य, तो ये उत्कृष्ट जो है, तो जो उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट होगी क्या, जघन्य होगी क्या, तो नहीं होगी। तो उत्कृष्ट है वो सादि होगी क्या अनादि होगी, उत्कृष्ट हो तो सादि होगी ना, वो तो अनादि से उत्कृष्ट उत्कृष्ट ऐसा नहीं कहेंगे हम इस तरह से। तो वो बताएंगे क्या होती है वो बाद में, यानी एक एक प्रश्न पर अन्य 12 एप्लीकेबल करना है। अब जघन्य कहेंगे, जघन्य वो उत्कृष्ट हो सकता है क्या, जघन्य वो सादी हो सकता है कि, इस तरह से उस पर चर्चा चलेगी, वो बताएंगे स्वयं उसके उत्तर। यहाँ सब पृच्छाओं का जोड़ 169 मात्र होता है, 169। ये मनीषा बेन आपको बताना है 169 कैसा आया। बारह बारह 13 प्रश्न है एक के साथ, 12 जोड़ने का। और एक पहले तो 13 पूछ ही रहे थे, 13 पूछे थे और उसमें ये सब, अभी 13 × 13 करना है, 169 होते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 13 × 13, ये निकालो ना। नहीं नहीं, ये 13 को 13 गुना करना। हाँ, देखो इसी कारण इस देशामंजक सूत्र में अन्य 13 सूत्रों को देखना चाहिए, ख्याल में ना, इसको देशामर्शक कहते हैं। एक ही उन्होंने बताया, उसमें इतने सारे उसके अन्य और इतने विभाग हो सकते हैं प्रश्नों के ही। अब उसके उत्तर में बता रहे हैं, देखो 4 नंबर का सूत्र। उक्त वेदना, यानी ज्ञानावरण की वेदना की बात चल रही थी, ऊपर सूत्र प्राकृत में, उक्कसा व अनुक्कसा व जहन्ना व अजहन्ना व, उक्त वेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है और अजघन्य भी है। कहाँ होती, किसकी होती, उसकी बात नहीं, वो होती है कि नहीं होती, बस इतनी बात है कि ज्ञानावरण की वेदना उत्कृष्ट भी हो सकती है, जघन्य भी हो सकती है, ये बात है। यह भी देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ शेष 9 पदों को कहना चाहिए, यानी वो बाकी भी वो है, होती है, ऐसा वहां पर भी बताना चाहिए। देशामर्शक होने से ही इस सूत्र में शेष 13 सूत्रों का अंतर्भाव कहना चाहिए। उनमें पहले प्रथम सूत्र की प्ररूपणा करते हैं, वही इस प्रकार है। अब प्रथम सूत्र बता रहेंगे, उसमें वो 13 का अंतर्भाव करके बताएंगे कि ज्ञानावरणीय की वेदना, हमने उसमें नंबरिंग करेंगे, आप 1, 2, 3 पर डालना, उसमें एक नंबर पर ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा, वो क्ष हुआ है, क्षेत्र की अपेक्षा कथंचित उत्कृष्ट है। कथंचित उत्कृष्ट है का अर्थ क्या है, किसी अपेक्षा उत्कृष्ट है, क्योंकि वो उसका स्वामी वगैरह बताएंगे। क्योंकि 8 राजुओं में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्र पाया जाता है। वो 8 राजु कैसा उन्होंने गठित किया वो बताएंगे बाद में, पहले यानी वो कहाँ पड़ा था, वो किस तरह से कौन से तरह से उसने विग्रह गति में वो नीचे गया, उसकी बात बताएंगे।
ये सबसे ज्यादा नानावाणी का क्षेत्र होता है,
क्योंकि वो महामत्स्य, महामत्स्य ने वो कितना 12.5 करोड़ घन राजू वाला, वो वेदना के काल में तिगुणा हो सकता है ना? तो तिगुणा होता है तो उसका तिगुणा क्षेत्र व्याप कर वो पूरा ही उसका मारणांतिक करेगा, यानी वो तो वहां पड़ा है, देव ने उठाकर उसको समुद्र के बाहर पटक दिया है। हाँ, तो स्थंभी क्षेत्र ने कोने में पड़ा है, वहां से नीचे की बाजू आते हैं मोर देन हाफ राजू, और फिर पश्चिम की ओर से एकदम डायरेक्ट पूर्व की ओर एक राजू ऐसा चला जाता है, और सातवां नरक नीचे कितना राजू नीचे है, 6 राजू। तो इस तरह से उसको लेना है, वो बताएंगे कैसा है क्या होता है। मरणांतिक, मरना के एक अंतर्मुहूर्त पहले, देखो मरणांतिक समुद्घात का अर्थ क्या है, उस जीव के प्रदेश, अभी तो कहाँ जन्म लेना है वो नक्की है, अभी यहाँ से जाकर वो कोने में जन्म लेना है, तो यहाँ जीव है, ऐसा गया एक मोड़ लिया फिर दूसरा मोड़ लिया, तो ये सारे उसके प्रदेश ऐसे फैले हुए हैं, ख्याल में आते हैं बात? तो वो मैक्सिमम उसके फैले हुए हैं, परंतु वेदना समुद्घात करने से तिगुणा करके फैले हैं, तो क्षेत्र और बढ़ जाता है, इसलिए लेना उसको।
सबको मारना तिगुणा
सबको नहीं होता, बहुतों को होता है, यानी मेजॉरिटी को होता है, कम लोगों को, यानी बहुभाग को होता है, कम भाग को नहीं होता, और उसका कोई कुछ कारण नहीं है, बस उसने आयु का बंद किया है और वो मरण के पहले ही प्रदेश निकसना चालू हो जाता है। कभी कभी तो हो सकता है कि 1-2 इंच ही जाए बाहर, पूरा वहां तक नहीं जाए, ये भी हो सकता है। बस उसके वो उसका फिक्स है ना, इस तरह से जाना है, तो अभी मरण आया है, मन के ना एकेंद्रियों के भी होता है, एकेंद्रियों के भी होता है, क्योंकि अनंत जीव तो एकेंद्रियों में पड़े, उन सबका समुद्घात चल रहा है एट ए टाइम, अनंत जीव एक समय में मरते हैं और उसमें मेजोरिटी समुद्घात भी कर रहे हैं, और ऐसा कुछ मन में विकल्प आना चाहिए मैं कहाँ जन्मूंगा ऐसा कुछ नहीं, वो तो कहने की पद्धति पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। वो देख के आया इसलिए मरा, ऐसा भी नहीं है, और वापस आता है ऐसा भी नहीं आता, इसमें तो कथन ऐसा है, उसके प्रदेश इस तरह से फैले हैं, तो जब मरण होगा तो यहाँ से छूटेंगे, पहले मोड़ तक जाएंगे, वहां से दूसरे मोड़ तक, वहां से वहां पर जहाँ जन्म लेना है, यानी ये पद्धति है उसकी, ये पन पूरे तक फैले ऐसा भी नहीं है, यथा योग्य मैक्सिमम वहां तक फैलेंगे। हाँ, अभी हम मैक्सिमम ही निकालना है इसलिए वो क्षेत्र लिया। अब कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि महामत्स्य को छोड़कर अन्यत्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र देखा जाता है, ये सेकंड नंबर। अब कथनचित जघन्य है, जघन्य कब होगा देखो, क्योंकि त्रि समयवर्ती आहारक वह त्रि समयवर्ती तद्भवस्थ सूक्ष्म निगो जीव के जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, वो हमने देखा था ना, वो तो बहुत बार उसने वो तो निगोद से निगोद में जन्म लिया है ऐसा जीव, तीसरे समय में उसकी अवगाहना जघन्य होती है, क्योंकि पहले उसका शेप ऐसा आयताकृति होता है, बाद में थोड़ा
क्या होता है उसमें?
उसका क्षेत्र ऐसा लंबा चौड़ा होता है पहले समय, दूसरे समय में वो तो स्क्वायर हो जाता है, सूक्ष्म ही है वो, तीसरे समय में वो गोलाकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल आप निकालो तो कम हो जाता, तो वहां लिया उसको, तो जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। त्रि समयवर्ती आहार गोल होगा उसका, है आहार के ने उसने शरीर के परमाणु ग्रहण किया है, और उसी समय तद्भवस्थ भी हुआ है, उसको तद्भवस्थ कहते हैं। अब चौथा नंबर, कथनचित वह अजघन्य है, क्योंकि उक्त सूक्ष्म निगोद जीव को छोड़कर अन्यत्र अजघन्य क्षेत्र देखा जाता है। देखो जो उत्कृष्ट नहीं है वो सब आहार के ने शरीर के परमाणु को ग्रहण करने वाला, हाँ हाँ वही लेना, उसी जीव में और स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं, केवल सूक्ष्म निगोद कहना है तो जनरल कथन है, तो उसमें मिनिमम अवगाहना कब होगी उसको बता रहे हैं, उस समय उसका ज्ञानावरण मिनिमम होगा ना क्षेत्र, जीव की अवगाहना के अनुसार उसका कर्म की अवगाहना भी होगी। यहाँ तो कर्म की अवगाहना बताना है हमको, तो हमने जो जीव की अवगाहना की जो भेद देखे थे उसको यहाँ एप्लीकेट करना है। देखो कथनचित अजगण्य बताए ना, यानी उस सूक्ष्म निगोद को छोड़कर अन्यत्र अजगण्य क्षेत्र देखा जाता है। देखो जब हम उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कहते तो उसकी दो ही कंपैरिजन करना, जो उत्कृष्ट है वो सारा अनुत्कृष्ट, यानी जघन्य भी अनुत्कृष्ट ही कहने में आता है। अब दूसरे पद्धति से जब भेद करेंगे, जो जघन्य ने वो सारा ही अजघन्य है, इसलिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट ये दो भेद हुए और जघन्य अजघन्य ये दो भेद हो गए। अब पांचवें नंबर पर कथनचित व सादिक है, क्योंकि पर्यायार्थिक ने का आश्रय करने पर सब क्षेत्रों के साधिता पाई जाती है। यानी जो क्षेत्र जो है कौन सा, उत्कृष्ट या जघन्य, ये क्षेत्र पर साधि अनादि लगाना है। यानी जघन्य के पहले अजघन्य था कि नहीं था, हाँ जघन्य से जघन्य होगा तो साधिक कहेंगे, अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट होगा तो साधिक कहेंगे, उत्कृष्ट के बाद जो अनुत्कृष्ट होगा वो भी साधिक कहलाएंगे, पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा। क्षेत्र को लेना, उत्कृष्ट क्षेत्र अनादि से है क्या, सादी हो उत्कृष्ट कब होगा वो मारणांतिक करेगा तब, वो अनादि से तो नहीं कह सकते, उसको सादी होगी कि नहीं होगी। हाँ ऐसे जघन्य भी सादी हो सकता है, जघन्य के बाद अजघन्य हो जाएगा तो उसको भी सादी कहेंगे, उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होगा तो भी उसको सादी कहेंगे, अनुत्कृष्ट अनादि भी कह सकते हैं, अनुत्कृष्ट अजघन्य तो उसको अनादि भी कह सकते हैं हम, परंतु यहाँ सादी ये नाम सब पर लागू होगा,
सादी सब में आएगा,
यानी वो पहले चार है ना उस पर ये सब लगाने। अभी साक्ष्य नंबर कथनचित वह अनादि है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का आश्रय करने, सॉरी पांचवा सादिक हो गया ना, पर्यायार्थिक नय के आश्रय से सादिक हुआ, और अनादि कैसे, द्रव्यार्थिक नय का आश्रय करने पर अनादिपना देखा जाता है।
इसमें एग्जांपल क्या लेंगे,
द्रव्यार्थिक नय ने उसका भेद मत करो, सादि अनादि, ज्ञानावरण कर्म कब से है, अनादि का, इस तरह से वो द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय उसके एक एक भेद पर, यानी जो उत्कृष्ट क्षेत्र है
दोनों में अपेक्षा अलग आई ना,
वही तो है ना, पर्यायार्थिक यानी वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट भेद बताए, और द्रव्यार्थिक यानी केवल केवल यानी मात्र ज्ञानावरण की बात करेंगे, तो ज्ञानावरण कब से है, तो अनादि से है, ये कहते हैं। कथनचित वह ध्रुव है, सात नंबर, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेत्र जो सब लोक है वह ध्रुव देखा जाता है। अब यहाँ सभी जीवों की अपेक्षा सभी पूरा ही ले लिया, क्योंकि पूरे लोक में जीव है और वहाँ उस अपेक्षा से हमेशा ही ज्ञानावरण कर्म दिखाई। कथनचित वह अध्रुव है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उक्त क्षेत्र के अध्रुवपना भी देखा जाता है। यानी क्या कहता है, किसी एक जीव की अपेक्षा बताओ उसका ज्ञानावरण अध्रुव हो गया, या कोई एक एक भेद देखो वो अध्रुव रहेगा, भेद की अपेक्षा बात करेंगे तो। कथनचित वह ओज है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में कली ओज और तेजोज संख्या विशेष पाई जाती है। देखो अभी हम इसके भेद देखते हैं, ओज में दो बातें होती है, ओज यानी विषम संख्या, उसके दो भेद है कली ओज और तेजोज। कलियोज का एग्जाम्पल है कि उस संख्या को हमने चार से भाग दिया तो एक रह जाता है, जैसे तेरह संख्या है चार से भाग दिया चतिक बारह एक रह गया, यह है कलियोज। और तेजोज में वो भी विषम संख्या है, जैसे पंद्रह संख्या है और हमने चार से भाग दिया तो तीन शेष रह जाते, तो ये पंद्रह संख्या को क्या कहेंगे हम, तेजोज। तेरह संख्या को हमने कलियोज देखा, ये तेजोज। और कृतयुग्म होता है चार से निशेष भाग देंगे तो कृतयुग्म हो जाता है। तो यहाँ लिखा ना, कथनचित वह ओज है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में कलियोज और तेजोज संख्या विशेष पाई जाती है। कथनचित वह युग्म है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में कृतयुग्म का अर्थ क्या है, सम संख्या चार से निशेष भाग जाता है। और बादर युग्म किसको कहेंगे, अभी जो रह गया वो बादर युग्म है। हाँ, किसको कहेंगे बताएंगे आप? दो बाकी रहेंगे, सम संख्या है परंतु दो बाकी रहेंगे, जिसे 14 है। दो शेष रहते हैं। यानी वो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग उसमें अपेक्षा लग सकती है। अब 11 नंबर पर ओम किसको कहना, कथनचित वह ओम है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में हानि देखी जाती है, और कथनचित वह विशिष्ट है क्योंकि कहीं पर वृद्धि देखी जाती है, उसमें हानि वृद्धि तो होती रहती है, तो हानि होगा उसको ओम कहेंगे और वृद्धि होना उसको विशिष्ट कहेंगे। अब 13 नंबर, कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है क्योंकि कहीं पर वृद्धि और हानि के बिना क्षेत्र का अवस्थान देखा जाता है, यानी उतना का उतना क्षेत्र रहना उसको नोम नो विशिष्ट कहेंगे। अब द्वितीय सूत्र का अर्थ कहते हैं, उसमें से हमने 13 सूत्र बनाए थे ना, उसकी एक पहले सूत्र में 13 बातें बताई, अब दूसरा सूत्र, अब द्वितीय सूत्र का अर्थ कहते हुए इस प्रकार है, उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं है क्योंकि वे उसके प्रतिपक्ष भूत है। अभी एक को सब पर लगाना है। पहला नंबर क्या था, पहले तो हमने पहले तो ज्ञानावरणी की वेदना इस तरह से 13 प्रश्न बनाए थे। पहले 13 प्रश्न कैसे कि ज्ञानावरणी की वेदना उत्कृष्ट है क्या अनुत्कृष्ट है के वगैरह। अब क्या करना, ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदना अभी रिमेनिंग 12 पर लगा लो। 13 सूत्र में 13 प्रश्न बता रहे, हर सूत्र में 13 प्रश्न। अब ये 2 नंबर का पहले सूत्र में क्या, ज्ञानावरण की वेदना और उत्कृष्ट है क्या अनुत्कृष्ट है के वो 13 प्रश्न हो गए। अब सूत्र नंबर 2, यहाँ लैटिन 2 नंबर डालो आप। पेज नंबर 4 पर लास्ट लाइन में प्रथम सूत्र की प्ररूपणा करते हैं, वहां लैटिन 1 नंबर डाला था मैंने। पेज नंबर 4 पर वो सूत्र के नीचे तीसरी लाइन है ना, लास्ट लाइन प्रथम सूत्र की प्ररूपणा करते हुए इस प्रकार है, नहीं मिला अंतिम लाइन, उसको अंडरलाइन करो और लैटिन 1 नंबर डालो। ये प्रथम सूत्र, हाँ उसमें 13 लगाए, अब यहाँ द्वितीय नहीं, यहाँ पर भी अभी ज्ञानावरण के उत्कृष्ट पर अन्य 12 प्रश्न लगा रहे हैं ना। हाँ, ये दूसरा सूत्र हुआ, देखो दूसरा सूत्र यहाँ लैटिन 2 नंबर डालो। अब वो बताएंगे कैसे कैसे है। अब उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट तो है ही नहीं है। हाँ, तो उसमें सब प्रश्न नहीं होंगे, होते हैं कि नहीं होते करके उसका उत्तर में कम आएंगे। हाँ, उसमें उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट है ही है, उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट है वो जघन्य नहीं है, परंतु उत्कृष्ट है वो अजघन्य कहलाएगी। इस तरह से प्रश्न उन्होंने नहीं देते हुए उसके उत्तर डायरेक्ट दे दिए। बारह के 13 लगाएंगे, उत्कृष्ट वेदना उत्कृष्ट तो है ही है, हाँ, परंतु उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट वो जघन्य नहीं है, पर उत्कृष्ट है अजघन्य है, जो लागू होते हैं वो प्रश्न है करके वो बताएंगे। उसमें 13 नंबरिंग नहीं होगी, बाकी प्रश्न आप समझ लेना, ख्याल में है ना। देखो थर्ड लाइन इसकी है, नीचे से दूसरी लाइन, वह अजघन्य भी है, इसको हमने एक आंकड़ा दिया था, क्योंकि जघन्य से ऊपर के समस्त विकल्पों में रहने वाले अजघन्य पद में उत्कृष्ट पद भी संभव है। क्या कहना चाहते हैं? जब हमने 100 को उत्कृष्ट कहा, 1 को जघन्य कहा, जब 1 को जघन्य कहते तो 2 से लेकर 100 तक सारे अजघन्य हो गए। यदि हम 100 को उत्कृष्ट कहा तो 1 से लेकर 99 तक सारे अनुत्कृष्ट कहलाएंगे। वो अपेक्षा यहाँ लगानी है। अब कहते कथनचित वह सादिक भी है, क्योंकि अनुत्कृष्ट क्षेत्र से उत्कृष्ट क्षेत्र की उत्पत्ति है। पहले वो महामत से अनुत्कृष्ट था, वो फिर वो समुद्रात किया तो उत्कृष्ट हुआ, तो उत्कृष्ट के पहले अनुत्कृष्ट थे, बाद में उत्कृष्ट हुआ, इसलिए उसको सादी भी कहेंगे। अब कहते हैं कथनचित वह अध्रुव भी है, उसको ध्रुव तो नहीं कहेंगे। प्रश्न 13 के तेरा पूछना, क्या वो ध्रुव है क्या अध्रुव है, उसके उत्तर में जो जवाब आते उतनी उन्होंने बातें कही है। तो कहते अध्रुव है, क्योंकि उत्कृष्ट पद सर्वदा नहीं रहता, ये तो समझ सकते हैं ना। वो अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट रहा, उसका हमेशा तो नहीं रहेगा। अब 4 नंबर, कथनचित वह कृतयुग में भी है। कृतयुग में वो 4 से पूरा निशेष भाग जाता है ना, वो कृतयुग में है, क्योंकि समय है वो 4 से भाग जाता है। हाँ, क्योंकि वो उत्कृष्ट क्षेत्र उन्होंने जो कुछ कैलकुलेट करके दिखाया है ना, तो क्योंकि उत्कृष्ट क्षेत्र में बादर युग्म यानी सम परंतु दो शेष रहने वाली कलियोज और तेजोज रूप विशेष संख्याएं नहीं पाई जाती, उन्होंने अपनी ओर से बता दिया उसमें नहीं होती। अब कथनचित वह नौ विशिष्ट भी है, क्योंकि वृद्धि और हानि के होने पर उत्कृष्ट पने का विरोध है, क्योंकि जो उत्कृष्ट है उत्कृष्ट में और विरोध
वृद्धि तो है नहीं है, और उत्कृष्ट तभी कहेंगे जब हानि से रहित हो, यानी उत्कृष्ट का एक ही ओम यानी कम होना, विशिष्ट यानी वृद्धि होना। नो विशिष्ट क्योंकि वृद्धि और हानि के होने पर उत्कृष्ट पने का, उत्कृष्ट कहने से वो पर्टिकुलर एक ही है, अब उसमें अनुत्कृष्ट कहने पर उसे भिन्नाधिक बहुत भेद हो सकते हैं, उत्कृष्ट में तो नहीं हो सकते है ना। इस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना 5 पद स्वरूप है। समझ में आई बात? प्रश्न तो 13 पूछेंगे, पर उसमें से 5 पद उसमें लागू होते हैं, कि उत्कृष्ट है वो अजघन्य भी है, सादिक भी है, अध्रुव भी है, और लास्ट वाला कृतयुग्म है, और नौ विशिष्ट भी। अब अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना कथनचित जघन्य, उसमें 1 नंबर डालो। ये सूत्र नंबर 3 है, यहाँ लैटिन 3 नंबर डालो। उन्होंने लिखा नहीं अब सूत्र 3, परंतु अब हम समझ सकते हैं। ये सूत्र 3 तो अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, अब उसको पहला आंकड़ा लो कथनचित जघन्य है, क्योंकि जो जघन्य है उसको भी अनुत्कृष्ट नाम देते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट को छोड़कर शेष सब नीचे के विकल्प रूप अनुत्कृष्ट पद में जघन्य पद भी संभव है। इसका अर्थ समझ में? हाँ। दूसरा पॉइंट, कथनचित वह अजघन्य भी है, क्योंकि जो जघन्य नहीं है परंतु वह अनुत्कृष्ट कह सकते उसको, क्योंकि अनुत्कृष्ट अजघन्य का अविनाभावी है। अब 3 नंबर, कथनचित वह सादिक भी है, क्योंकि उत्कृष्ट पद से अनुत्कृष्ट पद की उत्पत्ति है, तथा अनुत्कृष्ट से भी अनुत्कृष्ट विशेष की उत्पत्ति देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने क्या देखा, जाओ उत्कृष्ट हमने 100 माना, और बाकी 1 से लेकर 99 तक सारे अनुत्कृष्ट है। अब यहाँ क्या बताते हैं, वो सादिक भी है। हम उस कोई भी पर्टिकुलर ले लेते हैं, 99 हो या 60 नंबर का हो, ये 100 के बाद 99 फिर दोबारा हो जाएगा, या 100 के बाद कोई 60 नंबर का हो जाएगा, तो उसको अनुत्कृष्ट सादिक कहेंगे। अब दूसरी बात क्या बताई कि अनुत्कृष्ट से भी अनुत्कृष्ट विशेष, उसका अर्थ क्या होता है, 40 से 50 हो जाना, 40 भी अनुत्कृष्ट है 50 भी अनुत्कृष्ट है,
पर 50 का शादी पना संभव होता है ना,
कि कायम 50-50 नहीं था,
60-50 हो सकता है। हाँ उसमें शादी लगाना, जैसे 50 है वो 60-50 हो जाए, 40-50 हो जाए, हाँ कुछ कुछ तो उसको शादी पना हो जाएगा। वह अनादिक नहीं है क्योंकि यह अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्ष है। कोई भी जो है क्षेत्र अनादि का तो है ही नहीं है, कोई भी नंबर करो ना, 40 नंबर ले लो, 30 नंबर ले लो, अनादि से तो नहीं, क्योंकि अनादि से हम हमेशा वो तो उसका क्षेत्र बदलते रहता है, तो कोई भी क्षेत्र विशेष उसका अनादि नहीं हो सकता। इन्हें उसमें विशेष
लेना, अनादि से अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होगा,
परंतु अनुत्कृष्ट में जो विशिष्ट है अनुत्कृष्ट है वो अनादि का नहीं है, इस तरह से ले लेना। नहीं वो सादिक की भी बात चल रही, अनादिक नहीं है जान लिखा ना, हाँ क्या है, क्या है वो लगा रहे वहाँ पर, चौथा नहीं अभी तीसरा ही चल रहा है, सादिक की ही चर्चा चल रही है, सादिक है अनादि नहीं है ये बात चल रही। हाँ देखो चौथी लाइन से फिर पढ़ते हैं, पांचवी लाइन, वह अनादि नहीं है क्योंकि यह अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्ष, पद विशेष पर्टिकुलर अनुत्कृष्ट देख रहे, अनुत्कृष्ट सामान्य की विवक्षा करने पर भी वह अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट पद में गिरने की अपेक्षा सादीपना देखा जाता है। आगे प्रश्न पूछा है, यदि कहा जाए नित्य निगोद जीवों में उसका अनादिपना पाया जाता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें भी अनुत्कृष्ट पदों के पलटने से सादिपना जाता है। हमने देखा ना पर्टिकुलर उत्कृष्ट की बात नहीं है, अनुत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट होता है, यानी पर्टिकुलर अनुत्कृष्ट अनादि से नहीं हो सकता, ख्याल में आते ना उनको क्या कहना है। अभी हमने उसको 30-40 ऐसा नाम दिया, अब चार नंबर अब देना है, कथनचित वह अध्रुव भी है, क्योंकि सर्वदा एक अनुत्कृष्ट पद विशेष रह नहीं सकता, भले वो अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट है परंतु पर्टिकुलर अनुत्कृष्ट कायम नहीं रह सकता, उसमें तो चेंजेस होते रहते हैं। सामान्य का आश्रय करने पर भी ध्रुवपना संभव नहीं है, क्योंकि अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद को प्राप्त होने वाले जीव देखे जाते हैं, क्योंकि हमने तो इतने बार हो तो कितने बार हो तो उत्कृष्ट भी बीच बीच में हो जाएगा कोई जीव, तो इसलिए उस अपेक्षा से भी उसको ध्रुव नहीं कह सकते। अब पांचवा नंबर, कथनचित वह ओज भी है, क्योंकि किसी पद विशेष में अवस्थित दोनों प्रकार की विषम संख्या पाई जाती, दोनों ओज को एक में ले लिया, ओज ओज के दो भेद देखे थे, कलियोज और तेजोज, तो दोनों ही हो सकते हैं। कथनचित वह युग्म भी है, युग्म में भी हमने देखे थे कलि युग्म और बादर युग्म, वो दोनों इसमें हो सकते हैं, क्योंकि किसी अनुत्कृष्ट पद विशेष में दोनों प्रकार की सम संख्या देखी जाती है। अब सात नंबर यहाँ देना, ओज ने विषम और युग्म ने सम, कथनचित वह ओम भी है, ओम का अर्थ क्या किया था हमने, हानि होकर उत्पन्न होती, हाँ क्योंकि कहीं पर हानि से भी उत्पन्न अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है, हमने आपको बताया था 40-30 हो जाएगा तो हानि से उत्पन्न हुआ है। आठ नंबर, कथनचित वह विशिष्ट भी है, क्योंकि कहीं पर वृद्धि से अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है, यानी 20 का 30 हो जाए तो हम कहेंगे वृद्धि होकर वो अनुत्कृष्ट हो गया था। अब नौ नंबर पर, कथनचित वह नोम नो विशिष्ट भी है, क्योंकि अनुत्कृष्ट जघन्य में अथवा अनुत्कृष्ट पद विशेष की अभिवक्षा करने पर वृद्धि और हानि नहीं पाई जाती। क्या कहना चाहते, जो जघन्य वो भी अनुत्कृष्ट ही है, तो जघन्य कोई वृद्धि हानि वाला नहीं, जघन्य का एक ही भेद है, तो वहां उसको कहेंगे वो नोम नो विशिष्ट है, और किसी एक पर्टिकुलर पद की बात करेंगे तो वो पद तो वही है, तो इसलिए उसको भी वो कह सकते हैं। इस प्रकार ज्ञानावरण की अनुत्कृष्ट वेदना नौ पदात्मक है, उसमें नौ पद घटित हुए, जो नहीं उसको नहीं ले, परंतु प्रश्न तो 13 पूछे गए थे, उसमें से नौ पद है, ये बात घटित हो गई।
इस प्रकार तीसरे सूत्र की अर्थ प्ररूपणा की गई है।
ये तीन सूत्र कैसे हुए समझ में? तीन आंकड़ा डाला था क्या?
हाँ।
हाँ। अभी चार, लैटिन में चार डालो, अभी
नया पैराग्राफ है ना। अब चतुर्थ सूत्र की अर्थ प्ररूपणा करते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या था? जघन्य ज्ञानावरण, उस पर लगाना है। तो क्या उत्कृष्ट हो सकती? तो नहीं हो सकती, जो जघन्य उत्कृष्ट नहीं हो जाएगी, पर जगह उसको अनुत्कृष्ट कह सकते हैं, है ना। अब ये बताएंगे, जघन्य ज्ञानावरणीय वेदना एक नंबर कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि अनुत्कृष्ट जघन्य ओग जघन्य से भिन्न नहीं है। ओग जघन्य ने सबसे जो जघन्य उसको जघन्य कह दिया, और उसी को अनुत्कृष्ट भी कह सकते हैं। जो ओग में जघन्य वही अनुत्कृष्ट जघन्य है। दो नंबर कथनचित वह सादिक भी है, क्योंकि अजघन्य से जघन्य पद उत्पन्न होता है। हमने देखा था ना, पहले अन्य भाव से वो निगोद में गया, तीसरे समय में वो उसका जघन्य हुआ। पहले अजघन्य था फिर जघन्य हुआ, इसलिए उसको सादिक कहेंगे। तीन नंबर कथनचित वह अध्रुव भी है, क्योंकि हमेशा वो जघन्य जघन्य नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसका सर्वदा सर्वदा ने हमेशा अवस्थान नहीं रहता, यानी वैसा का वैसा रहना नहीं बनता। अनादि और ध्रुव उस पद उसके नहीं है, क्योंकि जो जघन्य उसको अनादि नहीं कह सकते हम, और उसको ध्रुव भी नहीं सकते। कायम जघन्य जघन्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि जघन्य क्षेत्र विशेष में अनादि एवं ध्रुवपना नहीं पाया जाता है। कथनचित वह युग्म है, क्योंकि उसे चार से अपहृत करने पर शेष कुछ नहीं रहता। वो हमने उत्कृष्ट में भी लगाया था, वो कृतयुग्म कहा था, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। कथनचित वह नौम नौ विशिष्ट है, क्योंकि उसमें
क्षेत्र
तो उसका तो क्षेत्रफल निकालेंगे ना, उसकी अपेक्षा लेना। कथनचित वह नौम नौ विशिष्ट है, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि का अभाव है। क्योंकि जघन्य कहने से वो एकदम एक ही उसका भेद होगा, उसमें कोई दो चार भेद नहीं होंगे। इस प्रकार जघन्य क्षेत्र वेदना पांच प्रकार अथवा अपने रूप के साथ छह प्रकार है। अपने रूप है ना, जघन्य वेदना जघन्य होती है, इस तरह से उसको अगर कहेंगे तो छह हो जाएंगे। इस प्रकार चतुर्थ सूत्र की प्ररूपणा की। देखो हमने जो पहला दूसरा सूत्र देखा था उत्कृष्ट वाला, वो भी पांच वाला था, और ये जघन्य भी पांच वाला है। हाँ, अभी पांचवा सूत्र, ये लैटिन पांच नंबर डालो। अब पांचवे सूत्र की प्ररूपणा करते हुए इस प्रकार है, अजघन्य ज्ञानावरणीय वेदना। जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य कहलाएगा, यानी उत्कृष्ट भी उसमें अजघन्य कह सकते हैं। तो कथनचित उत्कृष्ट है, नंबर एक हुआ, क्योंकि अजघन्य उत्कृष्ट ओग उत्कृष्ट से पृथक नहीं पाया जाता। ओग उत्कृष्ट इन जनरल जिसको उत्कृष्ट कह रहे हैं, वही अजघन्य में उत्कृष्ट कहलाएगा। दो नंबर कथनचित वह अनुत्कृष्ट भी है, क्योंकि जो अजघन्य है वो अनुत्कृष्ट भी होगा। देखो अजघन्य किसको कहेंगे, वो एक को छोड़कर दो से सौ तक अजघन्य है, तो बीच वाला कोई भी साठ नंबर का ले रहा उसको अनुत्कृष्ट भी कहेंगे अजघन्य भी कहेंगे, है ना। ये दो नंबर हो गया, क्योंकि वह उसका अविनाभावी है। तीन नंबर कथनचित वह सादिक भी है, क्योंकि पलटने के बिना अजघन्य पद विशेषों का अवस्थान नहीं है, यानी जो अजघन्य है वो भी पलटते रहते हैं, कोई एक फिक्स कायम नहीं रहता है। चार नंबर कथनचित वह अध्रुव भी है, इसका कारण सुगम है, क्योंकि कोई पद विशेष ध्रुव रूप से रहता नहीं है। कथनचित वह ओज भी है, ये पांच नंबर हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे भेद है ना अजघन्य में, तो ओज भी हो जाएगा। छह नंबर पर युग्म भी है, सात नंबर पर ओम भी है, एक ही वाक्य में सबको ले लिया उन्होंने, और आठ नंबर पर विशिष्ट भी है। इसका कारण सुगम है, क्योंकि बहुत सारे भेद है
तो उसमें वो बातें घटित होती है। कथनचित नौ नंबर डालो, वह नौम नौ विशिष्ट भी है क्योंकि यहाँ पद विशेष की विवक्षा है, यानी किसी पर्टिकुलर पद की अपेक्षा कहेंगे तो वृद्धिहानि करके नहीं हुई, वो उस पद की बात हो रही है। इस प्रकार अजघन्य वेदना के नौ या दस भंग होते, यानी अजघन्य को अजघन्य कहेंगे तो दसवा और हो जाएगा, अन्य के साथ लगाएंगे तो नौ। यह पांचवें सूत्र का अर्थ है, हमने ऐसा ही देखा था। तीसरे में भी हमने अनुत्कृष्ट में भी नौ लगाए थे, अजघन्य में भी नौ लगा रहे। अभी छह नंबर का सूत्र। अभी सादिक ज्ञानावरणीय वेदना, जो सादिक ज्ञानावरणीय है वो क्या क्या हो सकती है? उत्कृष्ट इन्हें वो भी सादिक होगी, अनुत्कृष्ट भी सादिक हो सकती है, तो ये बताएंगे। तो सादिक ज्ञानावरणीय वेदना, एक नंबर कथनचित उत्कृष्ट, दो नंबर पर कथनचित अनुत्कृष्ट, तीन नंबर पर कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य है, क्योंकि वो पर्टिकुलर दूसरे अपने प्रतिपक्ष के बाद होगी तो उसको सादिक कहेंगे। कथनचित अध्रुव भी है, वह अनादि व ध्रुव नहीं है। हाँ, सादिक कह दिए ना, तो जो सादिक है तो अनादि कैसे हो सकती है, और जिसको आदि कह दिया वो ध्रुव भी नहीं हो सकती, क्योंकि सादिपन के अनादि व ध्रुव होने का विरोध है। अब छह नंबर डालो, कथनचित वह ओज है, क्योंकि सादिक में सारे प्रकार लिए ना, कथनचित युग्म है, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट, और कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है। नोम नि विशिष्ट यानी किसी पर्टिकुलर की अपेक्षा नोम नो विशिष्ट कह सकते हैं। इस प्रकार सादी वेदना के दस या ग्यारह, यानी दस भंग अथवा ग्यारह भंग होते, ये दस अक्षरों में लिख दो। यह छठे सूत्र का अर्थ है। अब यही हम रुकेंगे, क्योंकि आगे अनादि की बात चर्चा भी है उसके ऊपर, कल से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज वन हो गया ना, हाँ आज ही पुस्तक शुरू हो गया। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।